अगले टॉपिक पे चलते हैं, खुशगवार जिंदगी का मफहूम। एक अंग्रेज मुफक्किर का कॉल है कि जेल में आहनी सुलाहों यानी लोहे की सुलाहों के पीछे से भी तुम्हारे लिए उफ के पार देखना मुमकिन है। और ये भी है कि अपनी जगह रहते हुए जेब से फूल निकाल कर सूंघो और मुस्कुराओ। और ये भी मुमकिन है कि तुम महल में रहते हुए दीबा हरीर पहनकर भी चिराग बा हो जाओ, नाराज रहो और भड़को और अपने घर कुंबे और अहले खाना पर नाराज होकर चिल्लाओ। बात कितनी सच्ची है, यानी जिसने खुश रहना है ना, वो जेल की सुलाहों के पीछे से भी कामयाबियों को देखने लगेगा। और जिसके हाथ में फूल है, जो महल में रहता है, जो दीबो हरीर यानी रेशम पहनता है फिर भी जल कुड़ रहा है, गुस्से से अपने आप को चिराग बनाए बैठा है, नाराज रहता है, भड़कता है, अपने घर वालों पे नाराज है, तो अब ये उसका नसीब है, आप उसको कैसे रोकेंगे। खुश नसीबी का ताल्लुक जमानो मकान से नहीं, ईमान से था। इस जुमले को 10 दफा लिखिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से, किसी भी जगह कॉपी पे लिख लें। अगर आपको कंप्यूटर से लिखने की आदत है तो आप कॉपी पेस्ट ना करें, खुद लिखें और हर लफ्ज को बोलें। खुश नसीबी का ताल्लुक जमाने और मकान, जिन्हें जमाने मकान आप समझते ही हैं, आप कहाँ हैं और कौन सा दौर है। 2020 है, 6 जुलाई है, ये जमान है, और आप कहाँ बैठे हैं आज, किस मुल्क में, किस दुनिया में, कितने बड़े घर में, कितने छोटे में, ये मकान है। तो आप कहाँ, कब, किस दौर में, आज का दौर, पिछला दौर, इससे कोई ताल्लुक नहीं खुश नसीबी का। बल्कि इस जुमले को जरा सा डिबेट करवा दूं, खुश नसीबी का ताल्लुक ईमान से होता है। जितना ईमान ज्यादा आप उतने खुश नसीब, और अपोजिट आप खुद जानिए। अल्लाह तआला की इताअत और दिल की कैफियत में खुशी का राज पोशीदा है। इसको भी लिखिए, 5 दफा लिख लें। देखिए ये ऐसी बुक पढ़ के नहीं चले जाएं घर से, इसमें से अपने लिए मोती चुनिए। फिर अगला जुमला 3 दफा लिखिएगा, और वो क्या है, अल्लाह दिल को देखता है। जी, दिल में यकीन होगा तो खुश नसीबी हासिल होगी, जिससे फिर दिलो जान को सुकून, राहत और इंशराह की कैफियत हासिल होगी। फिर इसका असर फैलेगा और वसी होगा और पहाड़ों, वादी और नखलस्तान तक दराज होगा। क्या पता चला, अपने अंदर खुशी ढूंढिए, हम बाहर की चीजों में खो जाते हैं और रोते ही रहते, मैं यहाँ क्यों नहीं, मैं वहां क्यों नहीं, मैं कब जाऊंगी, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। रोइए और रोइए और रोइए, आप और रोइए, और एक दफा कह दे, मैं जहां भी हूं अपने रब की रजा में हूँ, ईमान वाला दिल है, अपनी हैसियत से इबादत करती हूँ, अल्लाह मेरे से राजी है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने सादत की जिंदगी गुजारी जबकि इनका कपड़ा सफेद और पेवंद लगा हुआ होता था, अपने हाथ से इसे सी लेते थे। 3 मिट्टी के कमरे थे जिसमें सुकूनत थी। गिजा क्या थी, जैतून के तेल के साथ रोटी के टुकड़े। और आपकी तारीख लिखने वालों ने लिखा कि 17 साल तक जूतों में पैबंद लगाकर और टांग कर इस्तेमाल करते रहे। दिल तो चाह रहा ये भी कह दू, दो दो बारी लिख ले, 17 साल तक एक ही जूता पैबंद लगा लगा कर वो बन क्या क्या होगा। आप जरा अलमारी खोलिए, कितने जूते हैं अंदर, मेरे लिए 17 जूते तो होंगे किसी के पास भी, मेरा गुमान है। महीने में एक बार गोश्त खाते, ज्यादातर रोजा रखते, तलबे हदीस में कसरत से सफर करते, इसके बावजूद सुकून और इत्मीनान कल और राहत हासिल थी क्योंकि साबित कदमी और खुददारी थी। इंजाम पर नजर, सवाब की उम्मीद, अजर के ताले, आखिरत के लिए कोशिशें करने वाले और जन्नत के तलबगार थे। रश कर आपको इमाम अहमद पे, ये ऐसी नाम नहीं है, ऐसी इज्जत नहीं मिलती, ऐसे बंदा बड़ा नहीं बनता। आज हम के हाय इमाम अहमद, हाय इमाम अहमद, हाय इतने बड़े इमाम, इमाम हदीस के, फिक के इमाम। आज अगर आपके पास आ जाए ना, तो हो सकता है बहुत सारे लोग उनका हाल भी ना पूछे। ये होता है, माजी की शख्सियात में खोने वाले हाल की शख्सियात से फायदा नहीं लेते। हम भी अपने माँ बाप को उनके जाने के बाद ज्यादा नहीं याद करते, हमने उनकी जिंदगी में कितना उनसे फैज लिया और उनको दिया। तो जो मौत की खबर सुन के आते हैं उनको कोई जिंदगी में कह दे कि मत आना, घर बैठ कर दुआ करना, तो वो दुआ ज्यादा फायदा दे देगी, आने की जहमत ना कीजिए। ऐसे बड़े बड़े लोग जो आप इमाम अहमद की जिंदगी तो पढ़े, फौरन कहेंगे आप जी जी जरूर जरूर, लेकिन याद रखिए फर्क नहीं पड़ना तो उनको सुन के भी नहीं पढ़ना, क्योंकि हम दसियों बार सीरत कर चुके हैं, हम अबू बकर उमर उस्मान अली तनखा सब के हालात पढ़ चुके हैं, हम हजरत साहबा के दरख्शा पहलू पढ़ चुके हैं, उनको देखकर हम ना बदले, हमें तो अपने जैसे लोगों को देखकर करना है, जो वो करते हैं हम तो वो करेंगे। तो जरूरत है इस बात की कि हम भी तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, क्या हो गया, चुटकी काटिए खुद को, क्या जिंदगी जी के जा रही हूं, क्या नसीब है मेरा, मैं किधर हूं, मैं क्यों आई दुनिया में। देखिए रो रहे हैं सभी, रो रहे हैं ये हो गया तो वो हो गया तो ये नहीं दुनिया में, तो मर गए तो खप गए तो ये तो वो। याद रखिए एक का नुकसान दूसरे का फायदा होता है, अल्लाह ने कायनात में बड़ा दिल रखा है, चाहे कोरोना के 3-4 महीने बहुत सारों के फायदे भी हैं, तो बात ये है कि दुनिया में कुछ चीज खत्म नहीं होती, एक के हाथ से दूसरे के हाथ पे चली जाती है। तो इमाम अहमद की ये बातें सुनकर ये दुआ कर लीजिए कि हमें भी इनका कोई हल्का सा परतौ ही दे दे, महीने में एक बार गोश्त, 17 साल एक ही जूता, निकालिए अपने टूटे हुए जूते जो देने के लिए रखे और कोई लेने को तैयार नहीं, हालांकि उस पर एक पैबंद नहीं लगा हुआ, अकड़ कितनी, नखरा कितना, हम किसी का पहने, हम उतरा हुआ पहने, औकाती ये है। इंजाम पे नजर, इस पे भी गौर कीजिए, सवाब की उम्मीद इस पे भी गौर कीजिए, आखिरत के लिए कोशिश इसको भी देखिए। और इनके बरक्स आप ही के जमाने में जिन खुलफा ने एक दुनिया पर हुकूमत की, यानी मामून, वासिक, मुतसिम और मुतवक्किल ने, ये सारे उस दौर के खलीफा थे, जिनके अंदर कह लीजिए कि बिगाड़ के रास्ते खुलने शुरू हो चुके थे। इनके पास महल्लात थे, कसर थे, सोना चांदी था, खजाने थे, लश्कर थे, झंडे थे, निशानात और जायदादें थी और ख्वाहिशात थी, इसके बावजूद जिंदगी कदूरत भरी हुई थी। कदूरत लिख रहा है गंदगी, ट्रैश, यानी इनके दिल ट्रैश कैंस थे, दिलों में नफरतें थी, रंजो मलाल था, शोरशें थी, जंगें थी, बगावतें थी और शोर और हंगामे थे। बाद सकरातुल मौत में अपनी कोताहियों पर नादिम और अल्लाह के हजूर से शर्मसार थे, और इनशाला अल्लाह तला ने उनको बख्श दिया होगा। अल्लाह की शर्मिंदगी बड़ी प्यारी रहती है। एक और शख्सियत से मिलना चाहते हैं, इब्ने तैमिया, शेखुल इस्लाम कहते हैं इनको, लेकिन ना बीवी बच्चे, ना घर बार, ना कुंबा, ना माल और मनसब, जामे बनी उमैया के पास एक कमरे में रहते थे, दिन में एक रोटी खाते थे, दो कपड़े थे जिन्हें अदल बदल कर पहना करते, कभी मस्जिद में सो जाते, फिर भी जैसा कि खुद ही बयान फरमाते हैं कि इनकी जन्नत इनके सीने में थी। अभी मैंने शुरू में भी एक दफा बोल दिया ना कि इन जन्नत ही माई, ये इमाम इब्ने तैमिया का कॉल है, और जेल में डाल दिए गए और लोगों ने पूछा सुनाओ भाई आप तो आजकल बड़े मुश्किल में होंगे, कहा नहीं मेरी जन्नत मेरे सीने में। इनका कत्ल इनके लिए शहादत था, जेल में तन्हाई मुयस्सर आती, शहर से इनका अखराज सियाहत हो गई, क्योंकि इनके दिल में ईमान का पौधा भड़कर तनावर दरख्त बन गया था, और बरगो बार क्या होते हैं पत्ते और फल, इनायते रब्बानी का पानी इसे मिल रहा था, यानी ईमान का पौधा भड़कर तनावर दरख्त बन गया था और बरगो बार ला रहा था, इनायते रब्बानी का पानी इसे मिल रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर इस वक्त भी आप सब मैसेजेस छोड़कर फोकस होकर ये सुनने बैठ जाएं, तो काम तो आपके बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन ये बातें दिल पे असर नहीं करेंगी अगर साथ आप दूसरे काम कर रहे हैं। दिल में ईमान लाइए, वो ऐसा चिराग है जो बगैर आग के छुए रोशन हो रहा है, नूर उन अला नूर, नूर के ऊपर नूर है, अल्लाह जिसे चाहते अपने नूर की हिदायत से नवाजता है। सूरत नूर की आयत, ये मोमिनों के दिल होते हैं, अल्लाह ने इनकी खताओं का कफारा कर दिया और इनका हाल दुरुस्त कर दिया, जो हिदायत याब हुए अल्लाह ने इनकी हिदायत में इजाफा कर दिया और इन्हें तकवा अता फरमाया, तुम इनके चेहरों में नेमतों की शादाबी पाओगे। चलिए एक और भी शख्सियत है हमारे सामने, मुझे तो ऐसे ही लगता है शर्मिंदा होने के लिए, और
अल्लाह करे कि हम शर्मिंदा हो जाएं, खुद से खुद को देख लें। अबू जर रजी अल्लाह अन्हु मुकामे रब्जा की तरफ निकले, अपना खेमा वहीं गाड़ा, अपनी बीवी और बेटियों को वहां ले आए। साल के ज्यादा दिनों में रोजा रखते, अल्लाह को याद करते, खालिक की तस्बीह बयान करते, इबादत करते, कुरान की तिलावत करते और इसमें गौर फरमाते। दुनियावी चीजों में इनके पास क्या था? एक चादर, एक खेमा, चंद बकरियां, एक सीनी, एक प्याला और एक डंडा। साथियों ने एक रोज ज्यारत की और कहने लगे, भाई दुनिया से कोई सरोकार नहीं। फरमाया, दुनिया की जिन चीजों की जरूरत है वो मेरे घर में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खबर दे चुके हैं कि हमारे सामने एक तंग घाटी है जिसे वही पार कर सकता है जो ज्यादा से ज्यादा हल्का होगा। जी, तंग घाटी तो हमारे भी आगे है, गुजरना तो हमने भी है, पर हमारे तो कंधों पे सामान ही बहुत है। हजरत अबू जर शरह सदर के साथ मुतमईन दिल वाले थे, इतनी दुनिया रखते थे जितनी की जरूरत थी। जरूरत से ज्यादा को वो बोझ, जिम्मेदारी और अंजो फिकर का बायस समझते थे। सोचिए जरा, ये कहते हैं कि मैंने एक कसीदा लिखा है जिसका उन्वान क्या है, अबू जर फिल कर्निल खामिसी अशर, जिसमें अबू जर की गरीबुल वतनी, तौहीद और रूहो फिक्र के रास्ते में हिजरत के बावजूद इनकी खुश नसीबी के बारे में गुफ्तगू की है। यानी ये लोग इतना थोड़ा सामान लेकर भी इतने खुश नसीब थे, हम इतना कुछ होने के बावजूद भी रोते हैं। हमें रोना चाहिए, और रोइए और दुखी हो, क्योंकि आपकी निगाह कमजोर है, आपकी आई साइट वीक है, और वो भी करीब की। उन्होंने मेरे साथ लुत्फ व करम किया, मैंने इनको धमकाया। उन्होंने मौत की धमकी दी, मैंने लुत्फ का मामला किया। उन्होंने मुझे सवार किया, मैं उतर पड़ा कि अपने इरादे को पूरा करूं, तो उन्होंने मुझे इरादे से रोका। मैं हक के रास्ते में चल पड़ा, मैं मौत का पीछा कर रहा हूं, वो भाग रही है। मैं मौत की घाटी को उबूर कर रहा हूं, वो सो रही है। सहरा मेरी गुर्बत पर रोता है और कहता है, अबू जर डरो नहीं, हौसला रखो। मैंने इससे कहा, जब तक मेरा ईमान तवाना और मजबूत है मैं मर नहीं सकता। मैंने अपने दोस्त और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद किया है और इनसे तालीम पाई है। ये थे अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह अन्हु। दिल चाह रहा है ना कि थोड़ी देर खामोश रहकर इस लज्जत को अपने अंदर समेटें जो हमने इन शख्सियात की खुशगवार जिंदगियों के अंदर पाई है। ये है खुशगवार जिंदगी का मफहूम। आप और मैं किधर हैं, क्या सीखा? पहली बात हमने सीखी कि खुशी और मुसर्रत इनका ताल्लुक जमानो मकान से नहीं, ईमान से है। जिसको नहीं खुश होना ना, वो चांद पे भी चला जाएगा वो वहां भी खुश नहीं होगा। तो खुश रहने के फिर असबाब क्या हैं? अल्लाह की इताअत, अल्लाह का जिक्र, यकीन और ईमान की दौलत और शरह सदर, सीना खुल जाए। असलाफ के त्वार और अमल देखे, जिसमें तीन बड़ी शख्सियात को हमने देखा। एक थे इमाम अहमद बिन हम्बल, दूसरे थे इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्ला, और तीसरे थे अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह अन्हु। सब पढ़ चुके हैं आप, सिर्फ गौर करें, नजरें तो जमाएं। कैसी सादा भरी जिंदगियां थीं, पेवंद लगे कपड़े थे, जैतून का तेल उनका सालन था, सूखी रोटी थी, और हदीस की तलब में दूर दराज जाते, और पाँव में वो जूता जिसको 17 साल तक गांठ गांठ के पहना। ये सब क्यों करते थे? इसलिए कि अंजाम पर नजर थी, सवाब की उम्मीद थी, आखिरत के लिए कोशां थे। इब्ने तैमिया रहमहुल्ला को देखिए, शेखुल इस्लाम कहलाए, न बीवी बच्चे न घर बार, एक कमरे में रहते, कभी मस्जिद में सो जाते, हम तो अगले दिन रो रो के दुनिया को सुनाते, रात घर ना जा सका, घर नहीं है मेरा, कभी किसी के पास जाऊं कभी किसी के पास जाऊं। और इनकी जन्नत इनके सीने में थी, जेल की तन्हाइयों में कितनी किताबें लिखी, पढ़िए तो सही, फतावा इब्ने तैमिया खोलकर देखिए कितनी जिल्दों में है। इल्म के समंदर थे ये लोग, पहाड़ था जिसपे सर कोई इनको सर ना कर सका। आदम रश करते हैं उन लोगों पे जिनके पास बहुत इल्म है, कहां से आता है? और कोई इनको कत्ल कर दे तो वो इनकी शहादत थी। जिंदा रहते थे तो दुनिया में अल्लाह के नुमाइंदे थे ये। अबू जर को देखिए, खेमे में बीवी बच्चियों के साथ रहते, ज्यादा दिन रोजे रखते, अल्लाह की याद और तस्बीह में मशगूल होते, जितनी जरूरत होती उतनी दुनिया रखते, शरह सदर के साथ मुतमईन दिल वाले थे। सवाल पैदा होता है कि खुश रहने के कुछ फवायद हैं, बहुत सारे हैं। मसलन कल्ब और रूह मुतमईन रहता है, सेहतमंद जिस्म और लंबी उम्र मिलती है, जिंदगी में सुकून और तमानियत आ जाती है। और ऐसे लोग अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, तो रोना छोड़िए, अपने आंसू पोछिए। स्माइल सवाल पैदा होता है, खुश कैसे रहे? यानी हमें नजर ही नहीं आता कि हमारे पास कोई खुश रहने की चीज भी है, तो फिर क्या कीजिए? नेमतों की लिस्ट बनाए, 1 2 3 करके देखिएगा, आपकी गिनती पूरी हो जाएगी, नेमतें पूरी नहीं होंगी। क्योंकि वाइन ताउ दुने मतुल्ला हिला तुखसूहा। फिर कायनात पे गौर व फिक्र करें, मुराकबा करें। मुराकबा क्या होता है भला, कभी किए? राकिबा कहते हैं गर्दन को, तो मुराकबा ऐसे जैसे सर नीचे करें आप तो आपकी गर्दन पीछे से उठ जाती है। गौर व फिक्र होता है इसमें। फिर कुरान पाक की तिलावत और उस पर तदब्बर से खुश रहेंगे आप। एक्सरसाइज कीजिए, वर्जिश करें, भरपूर नींद लें। और सबसे खूबसूरत चीज़ इनमें से लेने की बजाय देना सीखें। हम लेते भी बुरा कोई नहीं, कल देंगे कैसे, लेकिन फिर भी देने की खुशी लेने से ज्यादा होती है। दीन ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए लड़े और लोग फिर आपसे ले लें। अच्छे ताल्लुक, रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, मामलात, हकूक उल इबाद। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह ताला की खुशी और मोहब्बत के असबाब क्या हैं। सूरत आल इमरान 134 ले लीजिए। जो खुशी और तकलीफ में खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं, और अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। सही मुस्लिम की रिवायत 6953, अबू हुरैरा रावी हैं कि अलबत्त अल्लाह ताला तुम में से जब कोई तौबा करे तो इससे ज्यादा खुश होता है जितना कोई तुम में से अपना गुमशुदा जानवर पाने से खुश होता है जी। और सही मुस्लिम की रिवायत है 4481, अबू हुरैरा ही इसके रावी हैं रदी अल्लाहु अन्हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला खुश होता है तुम्हारी 3 बातों से और ना खुश होता है 3 बातों से। खुश होता है इससे कि तुम इबादत करो, इसकी और इसके साथ किसी को शरीक ना करो, इसकी रस्सी सब मिलकर पकड़े रहो। मुराद कह के कुरान पाक पर अमल करो और फूट मत डालो। और नाखुश होता है बेफायदा गुफ्तगू से और बहुत पूछने से, यानी इन मसाइल का पूछना जिनकी ज़रूरत ना हो, या इन बातों का जिनकी हाजत ना हो, और जिनका पूछना दूसरे को नागवार गुजरे। राह जाती कुरेद, जातियात पे आ जाना, पर्सनल बातें पूछना लोगों से अल्लाह को अच्छी नहीं लगती। और माल के तबाह करने से, यानी आधा धनिया सिंक में ही बहा दो, आधी सब्जी छिलकों के साथ ही छोड़ दो, अल्लाह को नहीं अच्छा लगता। तो बहरहाल ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारा दिल बदल दे। अगला टॉपिक देखते हैं, खुशबख्ती की हकीकत क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का नक गरीबुन औ आबिर सबील। दुनिया में अजनबी और मुसाफिर बनकर रहो। फतूबा लिल गुरबा, बस खुशखबरी है अजनबियों के लिए। खुशबख्ती अब्दुल मलक बिन मरवान का महल, हारून रशीद की फौजें, इब्नुल जस्सास की कोठियां, कारून के खजाने और इब्ने सीना की किताब अश्शिफा या मुतनब्बी का दीवान नहीं, ना कुर्तुबा के बागात और अज़हरा के मरखजार। खुश नसीबी सहाबा के यहाँ कम आमदनी, सादा जिंदगी, किल्लत ज़राए यानी लो मीन्स और किफ़ायत शारी थी। खुश नसीबी इब्नुल मुसय्यब के यहाँ अल्लाह से मोहब्बत, इमाम बुखारी के यहाँ इनकी असहीह यानी इमाम बुखारी की खुशबख्ती उनकी किताब सही है, हसन बसरी के यहाँ सिद्क़ और इमाम शाफई के यहाँ इज्तिहाद और इमाम मालिक के यहाँ मुराकबा और इमाम अहमद बिन हम्बल के यहाँ तकवा और साबित बनानी के हाँ इबादत थी। यानी हर एक का एक एक कोड वर्ड है खुशबख्ती का। ये इसलिए कि इन्हें अल्लाह के रास्ते में जो प्यास, थकान और मुशक्कत लाहक हुई और कुफार को गैज़ो गज़ब में मुब्तला करने वाला जो भी कदम उठा और इनका जो भी नुकसान हुआ, इसके बदले इनके हक में अमल सालेह का इंदराज कर लिया गया। जी, खुशबख्ती बनाए जाने वाले चेक में नहीं, यानी वो चेक जो आप कैश करा ले, खरीदे जाने वाले जानवर में नहीं, ना वो कोई फूल है जिसे सूंघा जाए, ना तोला जाने वाला गेहूं और फैलाया जाने वाला कपड़ा। खुशी तो यह है कि दिल इस हक पर मुतमईन हो जिसका आदमी हामिल है, जो फिक्र इसने इख्तियार की है इस पर सीना खुला रहे और कल्ब खैर के काम पर राहत महसूस करे। सोचिए, क्या वाकई फिर हम अपने आप को खुशबख्त समझते हैं? हम समझा करते हैं कि जितने ज्यादा हमारे पास मकानात होंगे, ज्यादा चीजें होंगी, सहूलियात, मरगूबात और पसंदीदा चीजें मुयस्सर होंगी, उतना ही हम खुश व खुर्रम और शादमा होंगे। ऐसे ही है ना, कोई रॉन्ग एनालिसिस तो नहीं किया किसी ने। लेकिन ये चीजें कदूरत, फिक्र और अंदोह का सबब ही बनती हैं, क्योंकि कोई भी चीज कदूरत, रंज, अंदोह और मशक्कत के बगैर नहीं मिलती। अल्लाह ताला फरमाते, अपनी आंखें इन दुनियावी असबाब की तरफ मत उठाओ जो हमने इनको दे रखी हैं, ताकि हम इनको आजमाएं, यानी लीना ब्लुवा हूं फी माता हूं। अल्लाह ने जो कुछ दिया हुआ है ना, अल्लाह ताला उसको आजमाइश बनाता है कि देखते हैं इन्हीं खिलौनों में खो के तो नहीं रह जाते तुम, और तुम इन्हीं चीजों के ना मिलने और मिलने के बीच में ही तो कामयाबी और नाकामी को तोलने नहीं लग जाते। दुनिया के सबसे बड़े मुसलिह यानी इसलाह करने वाले और हादी यानी राह दिखाने वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फकर की जिंदगी गुजारी। आप भूख से करवटें बदलते, इतनी खजूरें भी ना पाते जिससे भूख मिट जाए, इसके बावजूद आप जिस नेमत, आराम, राहत, इन बेसात और कल्बी सुकून और तमानियत के साथ रहते, इसकी हद अल्लाह ही जानता है। यानी इसको तो आप में नाप भी नहीं सकते। और अल्लाह ताला तो फरमाते हैं, और हमने तुम्हारा बोझ उतार दिया जिसने तुम्हारी कमर तोड़ दी थी। अल्लाह का फजल आप पर बड़ा अजीम था, और अल्लाह के इल्म है कि रसूल किसे बनाया जाए। सही हदीस है कि नेकी हुस्ने अखलाक का नाम है, गुना वो है जो तुम्हारे दिल में खटके, और तुम ये पसंद ना करो कि लोग इसे जान लें। नेकी से जमीर को राहत और नफ्स को सुकून मिलता है। हत्ता के बाद लोगों ने कहा, जमाना कितना ही दराज हो जाए, नेकी बाकी रहती है, गुना सबसे बुरी ज्यादे राह है। हदीस में यह भी है कि नेकी से सुकून और गुना से खलिज पैदा होती है। नेकुकार साफ तौर पर इत्मीनान और सुकून से रहता है, और शक्को शुबे में मुब्तला आदमी हादसात, अंदेशों और हरकतों सकनात से ही खौफजदा रहता है। ये हर आवाज को अपने ही खिलाफ समझते हैं, इसका सबब बस इसका गुनाह है, क्योंकि गुनाहगार को तो कुलक, इज्तराब और अंदेशों का गिरफ्तार होना ही है। जब आदमी के काम बुरे हों तो इसके गुमान भी बुरे हो जाते हैं, और इसे जो वहमो गुमान होता है इसे वो सच समझ बैठता है। खुशी की जुस्तजू का एक ही नुस्खा है, लिखेंगे कि हमेशा भलाई की जाए और बुराई से बचा जाए ताकि अमन और चैन मिले। ये लिखा दीजिए उन लोगों को कि जो लोगों से उलझते ही रहते हैं, नाराजगियां ही बढ़ाते रहते हैं। वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म यानी शिर्क से आलूदा नहीं किया, ऐसे लोगों के लिए ही अमन है और वही राह याफ है यानी हिदायत याफ्ता है। एक सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, इसका सर भी गर्दो गुबार से अटा हुआ था यानी मट्टी पड़ी हुई थी। इसे साद बिन अबी वक्कास की तलाश थी, उन्होंने जंगल में डेरा डाल रखा था जहां शहर के हंगामों और तमद्दुन की आलूदगियों से बिल्कुल अलग थलग वो अपने बाल बच्चों, बकरियों के रेवड़ के साथ मुकीम थे। सवार करीब आया तो पता चला कि वो इनका बेटा उमर है। बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान आप बकरियां चरा रहे हैं और लोग हकूमत के लिए छीना छपटी में लगे हैं। फरमाया, शिर्क करने वालों से अल्लाह की पनाह चाहता हूं, बिला शुबा मैं खिलाफत का इससे भी ज्यादा मुस्तहिक हूं जितना इस चादर का जो मैंने ओढ़ रखी है। لیکن میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو صاحب تقوی، بے نیاز اور گمنام ہو۔ مسلمانوں کے لیے ایمان کی سلامتی قیصر و کسریٰ کی شہنشاہیت سے بھی بڑی ہے، کیونکہ آپ کے پاس دین ہی رہے گا جو آپ کو جنت میں داخل کرا دے گا، حکومت و سلطنت لا محالہ زائل ہو جائے گی۔ کیا غنا تھا، اللہ ہمیں بھی دے دے، سارے غم دیکھے گا ایسے دور ہو جائیں گے جیسے جھاگ دور ہو جاتا ہے ذرا سا ٹھہرانے سے۔ ان لوگوں کے اندر یہ ایمان تھا، ہمیں اس کی تلاش کرنی چاہیے، اس کی جستجو کیجئے، اس کی فکر لگائیے، اس کی طلب رکھیے۔ ورنہ یاد رکھیے کہ سب کچھ پا کر بھی سب کچھ نہیں ملے گا، خوشی سکون نہ ملا تو باقی چیزوں سے آپ کو لینا بھی کیا اور دینا بھی کیا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ خوش بختی کی جو حقیقت ہم نے دیکھی، تو اس میں ذرا سا مزید غور و فکر کرتے ہیں، تھوڑا سا اس پہ توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کچھ مزید پا لیں، کیونکہ دیکھیے نا، لوگ تو لوگ ہی ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، اپنی بات کیجئے، آپ کے میرے لیے معیار بدلنے کی ضرورت ہے۔